国国际广播电台。
耶 ，China Radio International 嘿。
नमस्कार, यह China Radio International है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आपका पत्र मिला और पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान का निरीक्षण दौरा किया। चीन में हांगकांग की वापसी की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम शुरू हुआ और तुर्की ने नाटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड स्वीडन का समर्थन किया। लीजिए अब आप अखिल पारस से सुनिए आज के पूरे समाचार। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 28 जून को चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान का दौरा किया। इसके दौरान उन्होंने बल देते हुए कहा कि तकनीकी आत्मनिर्भरता और आत्म सुधार हर किसी देश की समृद्धि और सुरक्षा की नींव होती है। हमें संपूर्ण रूप से ठीक तरीके से और व्यापक रूप से विकास की नई विचारधारा को लागू करना चाहिए। गहन रूप से सृजन से विकास को बढ़ावा देने की रणनीति लागू करने के साथ तकनीक के महत्वपूर्ण क्षेत्र को अपने हाथों में लेना चाहिए। तकनीकी आत्मनिर्भरता और आत्म सुधार में ज्यादा बड़ी प्रगति हासिल करके निरंतर रूप से अपने देश में विकास की स्वतंत्रता, स्वायत्तता और सुरक्षा को उन्नत करना चाहिए। उनके अलावा ज्यादा नई तकनीकों और नए उद्योगों को जन्म देने और आर्थिक विकास के नए क्षेत्रों व रास्ते को खोलने से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में नई श्रेष्ठता पैदा करनी चाहिए। 28 जून को दोपहर बाद शी जिनपिंग ने वुहान के उद्यम और सामुदायिक बस्तियों का दौरा किया। वे सबसे पहले वुहान हुआकोंग लेजर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड पहुंचे। वहां उन्होंने हुबेई प्रांत में ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सूचना उद्योग के विकास और केंद्रीय तकनीक के अनुसंधान का परिचय सुना और चिप उद्योग में नवीन उपलब्धियों के प्रदर्शन का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। 25 वर्षों में एक देश दो व्यवस्थाएं नामक नीति हांगकांग में लागू की गई। हांगकांग का विकास चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा दिए गए ध्यान और समर्थन से अलग नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से हांगकांग का भविष्य देखा और एक देश दो व्यवस्थाएं की स्थिरता के साथ लागू करने को सुनिश्चित किया है। 29 जून 2017 को हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में शी जिनपिंग ने विशेष विमान के गैंगवे से चले और दोस्ताना ढंग से मुस्कुराते हुए कहा कि 9 वर्षों के बाद मैं फिर एक बार हांगकांग वापस लौटा। मुझे बहुत खुशी हुई है। मैंने हमेशा से हांगकांग के प्रति बड़ा ध्यान दिया है। मैं अपनी आंखों से हाल के कई वर्षों में हांगकांग के विकास को महसूस करना चाहता हूँ। फूचियन और चुचियांग में काम करते समय शी जिनपिंग ने कई बार प्रतिनिधिमंडल के साथ आदान प्रदान के लिए हांगकांग का दौरा किया। साल 2008 में तत्कालीन उप राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हांगकांग जाकर पेचिंग ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के लिए घुड़सवारी प्रतियोगिता की तैयारी कार्य का निरीक्षण किया। सीपीसी की 18वीं कांग्रेस के बाद पार्टी और देश के सर्वोच्च नेता के रूप में शी जिनपिंग पहले की तरह हांगकांग बंधुओं के हितों पर ध्यान देते हैं। हांगकांग समारोह समिति ने 28 जून को विक्टोरिया पार्क में चीन में हांगकांग की वापसी की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सिलसिलेवार कार्यक्रम शुरू किए। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय व क्षेत्रीय झंडे प्रदर्शनी और लाइट शो आदि शामिल हैं। 25 सजावट बसें, 10 सजावट इलेक्ट्रॉनिक कारें और राष्ट्रीय व क्षेत्रीय झंडे फहराने वाली 25 बड़ी नाव विक्टोरिया बंदरगाह में यात्रा करेंगी। समारोह समिति के प्रमुख छन होंगताओ ने कहा कि 25 सालों में हर एक जुलाई को हांगकांग के लिए अतीत का सिन अवलोकन करने और भविष्य की ओर देखने का समय है। 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का बड़ा महत्व है। हांगकांग के विभिन्न जगतों को एक देश दो व्यवस्थाओं की नीति और हांगकांग के भविष्य पर विश्वास बढ़ाना चाहिए ताकि चीनी राष्ट्र का महान पुनरुत्थान साकार हो सके। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लीचेन ने 29 जून को एक संवाददाता सम्मेलन में जोर देते हुए कहा कि G7 को किसी भी तरीके से चीन को बदनाम करना और चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर देना चाहिए। चाओ ने यह भी कहा कि हांगकांग का मामला चीन का आंतरिक मामला है। विश्व में सिर्फ एक ही चीन है और ताइवान चीन की प्रादेशिक भूमि का एक अखंडनीय भाग है। चीन को सभी आवश्यक कदम उठाकर देश की प्रभुसत्ता और सुरक्षा की रक्षा करने का हक है। हाल में अमेरिकी न्यूज वीक ने एक जनमत संग्रह जारी कर कहा कि केवल 49% अमेरिकी मानते हैं कि वे एक लोकतंत्र देश में रहते हैं, जबकि 63% अमेरिकियों का मानना है कि अमेरिकी सरकार सिर्फ गिने चुने लोगों के हितों की सेवा करती है। इसकी चर्चा में चीनी प्रवक्ता चाओ लीचेन ने कहा कि अमेरिकी लोकतंत्र धन लोकतंत्र है। अमेरिका में गरीबी और धनी के बीच भारी अंतर मौजूद है। अमेरिकी शैली वाला लोकतंत्र सच्चा लोकतंत्र नहीं है, बल्कि एक झूठा लोकतंत्र है। चीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन आयोग ने 29 जून को एक न्यूज ब्रीफिंग का आयोजन किया, जिसमें आयोग के प्रेस प्रवक्ता फंग याओशांग ने कहा कि अमेरिकी सरकार ने सिंचांग में तथा कथित जबरन श्रम का झूठ बताया, जिसने सिंचांग के लोगों के बुनियादी मानव अधिकार का गंभीर उल्लंघन किया है, चीनी उद्यमों के कानूनी हितों को नुकसान पहुंचाया है, गंभीर रूप से वैश्विक उद्योग श्रृंखला और सप्लाई श्रृंखला की सुरक्षा को धमकी दी है। चीनी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन आयोग और विश्व के प्रासंगिक विभाग इसमें प्रभावित चीनी उद्यमों को सार्वजनिक कानूनी सहायता देंगे। फंग याओशांग ने यह भी कहा कि चीन अमेरिकी उद्योग और वाणिज्य जगत समेत अंतर्राष्ट्रीय उद्योग और वाणिज्य जगतों के साथ हाथ मिलाकर इस विधेयक के कुप्रभाव को मिटाने, अमेरिकी सरकार से गलतियों को दूर कर इस विधेयक को रद्द करने का आह्वान करता है, ताकि सामान्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी व्यवस्था की बहाली कर सके और न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी माहौल की रक्षा कर सके। संयुक्त राष्ट्र स्थित चीनी स्थायी प्रतिनिधि चांग चुन ने 28 जून को सुरक्षा परिषद के कार्य उपाय को लेकर एक खुली बैठक में बोलते हुए सुरक्षा परिषद के कार्य उपाय के सुधार पर चीन के रुख पर प्रकाश डाला। चांग चुन ने कहा कि सुरक्षा परिषद के कार्य उपाय बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन एकता प्राथमिकता है। सुरक्षा परिषद को अहम सवालों का राजनीतिक समाधान करना चाहिए और राजनयिक मध्यस्थता में बड़ी कोशिश करनी चाहिए। सुरक्षा परिषद के सदस्यों को एक दूसरे का सम्मान कर सलाह मशविरा करना चाहिए और सबसे बड़े हद तक एक दूसरे के ध्यान जनक मुद्दों पर ख्याल करना चाहिए। चांग चुन ने यह भी कहा कि चीन सुरक्षा परिषद द्वारा गैर सरकारी प्रतिनिधियों की बैठक में भाग लेने का समर्थन करता है। उन्होंने आशा जताई कि सुरक्षा परिषद के मौजूदा अध्यक्ष देश आमंत्रित प्रतिनिधियों के प्रबंध को मजबूत करेगा, ताकि वे न्यायपूर्ण रुख अपना सकें। यह सुरक्षा परिषद में समस्या को हल करने का मददगार सिद्ध होगा। तुर्की, फिनलैंड और स्वीडन ने 28 जून को स्पेन के मैड्रिड में एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें फिनलैंड और स्वीडन के साथ नाटो में शामिल होने के लिए तुर्की के समर्थन की पुष्टि की गई है। नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन, स्वीडिश प्रधानमंत्री एंडरसन और फिनिश राष्ट्रपति निनिस्टो उसी दिन मैड्रिड में मिले थे। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार इस ज्ञापन में तुर्की चाहता है कि फिनलैंड और स्वीडन अब पीकेके, सीरियाई कुर्द, YPG और गुलेन मूवमेंट का समर्थन ना करें। दोनों देश तुर्की को रक्षा उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने पर भी सहमत हुए। फिनलैंड और स्वीडन ने मूल रूप से सैन्य गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, लेकिन इस साल मई में नाटो में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया। 3 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन 28 जून को जर्मनी में संपन्न हुआ। कई विशेषज्ञों ने सम्मेलन की आलोचना की। उनका मानना है कि G7 वैश्विक मामलों का मुकाबला नहीं कर सकता। बताया जाता है कि शिखर सम्मेलन के दौरान उपस्थित नेताओं ने यूक्रेन स्थिति, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार और महामारी का मुकाबला आदि विषयों पर चर्चा की। G7 ने कहा कि वह रूस पर प्रतिबंध मजबूत करेगा और यूक्रेन को जरूरी वित्तीय, मानवीय और सैन्य समर्थन देगा।